शांति। दो बातें महत्वपूर्ण है, रचयिता और रचना। सृष्टि रचयिता पिता परमात्मा का सही ज्ञान आपने प्राप्त किया कि वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा इस अनादि सृष्टि का राज आकर खोलते हैं, इसलिए उसे क्रिएटर रचयिता कहा जाता है। और ये सृष्टि रचना क्या है? जिस संसार में हम रहते हैं, ये वर्ल्ड साइकिल कैसे चलता है, हमारा उसमें रोल क्या है? जैसे कोई ड्रामा के एक्टर हम बने और हमें पता ही ना हो कि इस ड्रामा फिल्म का क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसके प्रिंसिपल एक्टर्स कौन है, उस ड्रामा का ड्यूरेशन क्या है, स्टोरी क्या है, अगर हमें पता ना हो तो उस एक्टर को क्या कहे हा? कि भाई ये कैसा एक्टर है जिसको ये कुछ पता ही नहीं है। तो हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल एक्टर्स कौन है, इसका ड्यूरेशन क्या है और क्या इसकी स्टोरी है। तो इस विश्व नाटक के रचयिता स्वयं परमात्मा ने हमें इस वर्ल्ड साइकिल का जो राज बताया है वो मैं आपके सामने रखती हूं। ये विश्व नाटक तीन अविनाशी परिबलों से बना हुआ है। एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष और तीसरा है परमात्मा। हम कहते भी है प्रकृति और पुरुष का बना हुआ ये खेल है। प्रकृति मीन्स ये नेचर, पांच तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति के ये पांच तत्व है, ये अनादि अविनाशी है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि भौतिक शक्ति ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, वो रूपांतरित होती रहती है। इसलिए भल अनेक खगोल शास्त्रियों ने, भूस्तर शास्त्रियों ने इसकी उत्पत्ति के राज खोलने के प्रयास किए हैं, और हरेक ने इसके बारे में अबाउट लगभग बातें बताई, फैक्ट फिगर्स किसी ने नहीं बताए कि लगभग अबाउट इतने अरबों वर्ष पूर्व सूर्य निहारिका से अलग हुआ। इतने अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। लगभग इतने करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी ठंडी हुई होगी। इतने करोड़ों वर्ष पूर्व उसका पहला लेयर बना होगा। इस प्रकार उन्होंने अपने संशोधनों के परिणाम रूप हमें अबाउट लगभग करीब बातें बताई हैं। उसके बारे में फैक्ट कोई नहीं बता सका है। उसका फैक्ट आंसर यही है कि प्रकृति के ये पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी है, ना उसकी आदि है ना अंत है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते रहते। दूसरी है पुरुष चैतन्य शक्ति, ये है प्राकृतिक शक्ति, भौतिक शक्ति, मटेरियल पावर। पुरुष माना चैतन्य शक्ति, एनर्जी जिसको हम कहते हैं, आत्मा भी अनादि अविनाशी है। इसलिए हम कहते हैं अजर अमर अविनाशी। गीता में भी कहा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से छेद नहीं सकते, पानी से भिगो नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते, अग्नि में जला नहीं सकते, ऐसी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि वो चैतन्य शक्ति है, एनर्जी। और तीसरी शक्ति है परमात्मा, सुप्रीम पावर, वो भी अनादि अविनाशी है। और इन तीनों का बना हुआ ये विश्व नाटक भी अनादि अविनाशी। इसलिए हम कहते हैं ये संसार चक्र चलता ही रहता है। चक्र मीन्स जो चलता ही रहता है। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, ये अनादि अविनाशी रूप से ये विश्व नाटक चलता ही रहता है। अब इन तीनों का रोल क्या है? प्रकृति अनादि अविनाशी है जो अपनी रीति से स्थापना पालना और विनाश का कार्य अपनी रीति से करते रहते। ये तीन मुख्य कार्य है। हम कहते हैं ना गॉड, जी ओ डी मीन्स, जी मीन्स जनरेशन, स्थापना उत्पत्ति, ओ मीन्स ऑपरेशन ऑपरेट करना, पालना, चलाना. एंड डी मीन्स डिस्ट्रक्शन, परिवर्तन, विनाश. इन तीनों का राज जो बताता है वो है गॉड, परमात्मा. तो प्रकृति अपनी रीति से स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करती है, जो हम सब देखते भी हैं कि कैसे बीज जमीन में गिरते हैं, स्थापना का कार्य हुआ. उसी प्रकृति के तत्वों से वो बीज की पालना होती है, वो बीज अंकुरित होता है, फलता है, फूलता है, पौधा पेड़ बनता है. और वही प्रकृति जब तमो प्रधान बनती है तो ये पांचों ही तत्व उपद्रव मचाते हैं और विनाश का कार्य होता है. अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड आते हैं, फेमन होते हैं, साइक्लोन्स चलते हैं. ये प्रकृति के द्वारा विनाश का कार्य होता है. अब प्रकृति जो ये स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करती है, वो अपनी ही रीति से करती. ऐसे नहीं है कि प्रकृति कोई परमात्मा की इच्छा अनुसार कार्य करती. जैसे अब तक, जब तक विज्ञान का विकास नहीं था, यही अंधश्रद्धा लोगों में थी कि सूर्य भी भगवान चमकाते हैं, बरसात भी भगवान बरसाते हैं, बिजली भी भगवान चमकाते हैं. इतने तक ये मान्यता थी कि भगवान की इच्छा के बिगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है. लेकिन अब विज्ञान ने काफी प्राकृतिक सत्यों को स्पष्ट किया है कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, कैसे वो रोशनी देते हैं, बारिश कैसे बरसती है, बिजली कैसे चमकती है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, किस प्रकार से बनती है, विज्ञान ने अब ये स्पष्ट किया है. और हम भी विवेक से समझ सकते हैं कि प्रकृति परमात्मा की इच्छा अनुसार ही कार्य करती हो तो आज प्रकृति दुखदाई क्यों बनी है. परमात्मा तो सुखदाता है, कल्याणकारी है, रहम दिल मर्सीफुल है, दयालु कृपालु हम कहते हैं. तो क्या परमात्मा की कृपा से प्रकृति ये दुख विनाश का कार्य कर रही है क्या? वास्तव में प्रकृति को प्रभावित करने वाली, प्रकृति पर प्रभाव डालने वाली जो शक्ति है वो है पुरुष. हम चैतन्य शक्ति आत्माएं. हमारे विचार, वाइब्रेशन, व्यवहार, हमारे कर्मों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। कैसे? तो ये हमने समझा, प्रकृति अपनी रीति से स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। दूसरी है पुरुष चैतन्य शक्ति आत्मा। हम आत्माएं भी, आपने पहले लेसन में समझा है कि हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये स्थापना का कार्य हो। हम उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो पालना का कार्य हुआ। और वो ही मनुष्य आत्मा जब पतित तमो प्रधान बुद्धि बनता है तो वो विनाश का भी कार्य करता है। लड़ाई झगड़ा, खून, मारामारी, युद्ध, इसके द्वारा वो विनाश का भी कार्य करता है। अब मनुष्य आत्मा जो कार्य करती है वो भी अपने संस्कारों की प्रबलता अनुसार काम करती है। ऐसा नहीं है कि भगवान की इच्छा से हम काम करते। अगर मेरे अंदर अच्छे संस्कारों की प्रबलता है तो मैं अच्छे काम करूं। पतित संस्कारों की प्रबलता है तो मैं खराब काम करूंगी। कई बार लोग ये कहते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं, हम भगवान की प्रेरणा से ही काम करते। वो कहते हैं कि कई बार हमें खराब काम करने का, पाप करने का विचार आता है तो हमें अंदर से होता है कि वो नहीं करना चाहिए। ये अंदर बैठे हुए भगवान हमें पाप न करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन थोड़ा और विवेक से सोचिए कि कई बार पाप नहीं करना चाहिए उस प्रेरणा को भी दबाकर हम पाप कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। क्या परमात्मा की प्रेरणा इतनी कमजोर है कि इंसान उसको दबाकर भी खराब कर लेता है? फिर तो उस प्रेरणा का अर्थ क्या है? और इसका मतलब तो यही हुआ कि क्या इंसान सदा बुरा ही सोचता है, उसे अच्छे विचार आते ही नहीं है? और अगर वो बुरा ही सोचता, बुरा ही करता, फिर तो वो सदा दुखी ही होना चाहिए। पर मनुष्य आत्मा सुख भी भोगती है, दुख भी भोगती है। मीन्स हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते। मीन्स हम अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा करने की प्रेरणा वो परमात्मा की है और इंसान बुरा ही सोचता है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य आत्मा अपने संस्कारों की प्रबलता अनुसार कर्म करता है। बार बार हम हमारे ओरिजिनल संस्कार जो शुद्ध है, पवित्र है। पहले लेसन में आपने समझा है कि हर एक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वो ओरिजिनल संस्कार हमें अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं, पाप न करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हमारे लेटेस्ट संस्कार पतित संस्कारों की प्रबलता बढ़ जाती है तो वो प्रेरणा कमजोर हो जाती है। हम उस प्रेरणा को दबा कर भी पतित संस्कार के वश पाप कर लेते और इसलिए हम बोलते भी रहते हैं कि क्या करें, नेचर ही ऐसा है, हो जाता है। मैं समझता हूं मुझे प्यार से काम करना चाहिए लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे मुख से निकल जाता है, आदत ही ऐसी बन गई है, नेचर ही ऐसा हो गया है। हम कहते रहते बार बार पाप करने से बने हुए पतित संस्कार हमें फिर पाप करने के लिए बाध्य करते। और मनुष्य आत्मा जब पवित्र है तो उनके कर्मों के प्रभाव से ये प्रकृति जगत भी पवित्र होता है। पर जब मनुष्य आत्माएं पतितमो प्रधान बनती है तो उनके प्रभाव से क्रमशः ये प्रकृति पशु पंछी जगत भी पतित तमो प्रधान बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब राम राज्य था, मनुष्य देवता थे, तो शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। इवन द्वापर युग के ऋषि मुनियों के बारे में भी हम बताते हैं कि उनकी तपस्या से आसपास का वातावरण इतना सात्विक बन जाता था, जो शेर बाघ चीते जैसे हिंसक प्राणी भी उनके आश्रमों में पालतू प्राणी की तरह आकर शांत बैठ जाते थे। इवन आप कवि कलापी के एक काव्य में बताया गया है, आपने पढ़ा हो तो, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक राजा के राज्य में बहुत ही सुख वैभव है, धरती भी फर्टाइल है, लोग भी सुखी हैं। तो राजा एक किसान के खेत में जाता है और वो बूढ़ी माता उसे समय गन्ना काट के उसको वो रस निकाल के देती है, तो वो प्रभावित हो जाता है कि मेरे राज्य की धरणी में इतना कस है जो इतना रस निकला। तो उसे जाते जाते मन में विचार आता है कि फिर तो ऐसी धरती पर कुछ टैक्स लगाना चाहिए। और फिर दोबारा जब थोड़े समय के बाद वो आता है तो वो धरती और वो खेती सूख गई होती है, तब वो बूढ़ी माता कहती है कि दया ही न हुआ नृप, रस ही न हुई धरा। राजा दयाहीन हो गया तो उसके प्रभाव से ये धरा भी रसहीन बन गई। और ये साइंटिफिकली आज प्रूव है कि हमारे वाइब्रेशंस और विचारों का प्रकृति पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए कलयुग के अंत में जब मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है तो उसके प्रभाव से ये प्रकृति भी पतित बन जात। जब हम अपने नेचर स्वभाव को स्पॉइल करते हैं तो ये आउटसाइड नेचर भी स्पॉइल हो जात। हम अपने जीवन के नियम संयम को तोड़ते हैं तो ये प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं चलती। और इस प्रकार कलयुग के अंत समय जब पुरुष और प्रकृति दोनों पतित बन जाते हैं, तब आखिर वो परम शक्ति परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हम पतित मनुष्यात्माओं को पावन बनाते हैं। इसलिए परमात्मा का रोल इस वर्ल्ड ड्रामा में ये है कि जब हम सब पतित बन जाते हैं, प्रकृति भी पतित बन जाती है, तब वो सदा पावन परमात्मा अंत में आते हैं और हमें ज्ञान और योग की शक्ति से फिर हमें पावन बनाते हैं। परमात्मा मनुष्यात्मा को पावन बनाते, क्योंकि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बाकी सब तो उनके प्रभाव में चलने वाले, उसको फॉलो करने वाले। इसलिए परमात्मा मानव तन में आते हैं और मनुष्य को ज्ञान देते। जब मनुष्य ठीक हो जाता है तो ऑटोमेटिक प्रकृति पशु पंछी जगत भी ठीक हो जाते। इसलिए कई बार लोग एक और प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर शाम को भी आपको मिलेगा कर्म की फिलॉसफी में, कि इन पशुओं का उद्धार कैसे करें। उनको अपनी चिंता नहीं है कि हम पशु जैसे बन गए हैं, हम अपना उद्धार कैसे करें। हम उनके लिए सोचते हैं, लेकिन प्रकृति पशु पंछी जगत का उद्धार हमारे ऊपर आधारित। हम अपना शुद्धिकरण करेंगे, हम अपने को महान बनाएंगे, हम अपना उद्धार करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका हो जाएगा। इसलिए हमें स्व पर कॉन्सेंट्रेट होना है, स्व चिंतन करना है, स्वयं के बारे में हमें पहले जानना है कि हमारा रोल इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या है। इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो बिगड़ी को बनाने वाला है। जब ये विश्व नाटक कलयुग के अंत समय बिगड़ जाता है, तब वो आकर फिर से बनाते हैं। वो फिर से हमें कर्म का ज्ञान देते हैं, स्वयं का ज्ञान देते हैं, संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, हमारे कर्मों को ठीक करते हैं और हमारे श्रेष्ठ कर्मों के बल से इस विश्व को भी बदलते हैं। तो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा का कैसे इस ड्रामा में रोल है कि वो आकर हमें सारे राज बताते हैं। इसलिए वो क्रिएटर है। जैसे एक बाप अपने बेटे के चाल चलन भाव स्वभाव को जानता है, एक डायरेक्टर एक्टर्स की भाव भंगिमा को जानता है, इस प्रकार इस वर्ल्ड ड्रामा का जो डायरेक्टर है परमात्मा, वो ये सारा ज्ञान जानते हैं। इसलिए उसको क्रिएटर कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। बाकी क्रिएट करने का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा कोई एक एक पृथ्वी सूर्य चांद उत्पन्न करते हैं या एक एक मानव शरीर को घड़ते हैं, नहीं, वो तो प्राकृतिक प्रोसेस है अपना बना बनाए। लेकिन परमात्मा जब सब पतित बन जाते हैं तो उनको ये सारा सही ज्ञान देकर पावन बनाते। तो अब हम ये समझेंगे कि ये साइकिल कैसे धीरे धीरे डिग्रेड होता है। तो ये है पांच 5000 वर्ष का सृष्टि नाटक। जैसे वो 3 घंटे का फिल्म होता है और 3 घंटे के बाद वो शो रिपीट होते हैं, ये वर्ल्ड साइकिल 5000 वर्ष का है जो हर 5000 वर्ष के बाद पुनः रिपीट होता है। मैं और एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाऊं कि प्राकृतिक जगत में ऐसे कई छोटे छोटे साइकिल्स है जो चलते ही रहते हैं, रिपीट होते ही रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये साइकिल चलता ही रहता। ये 24 आवर्स का साइकिल, ऐसे वीक का साइकिल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 7 दिन का साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। इसी प्रकार मंथ का साइकिल है, जनवरी, फरवरी, ये आके फिर वापस वही आते। सीजन का साइकिल है, भी गर्मी होती है, फिर बारिश होता है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्मी होती है, ये सीजन्स का साइकिल। इसी प्रकार डेथ एंड लाइफ का साइकिल, जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, अगेन मृत्यु होती है, फिर नया शरीर लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर नया शरीर लेते हैं। तो ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल है जो चलता रहता है। आप जानते हैं कि वे सूर्य की गर्मी से पानी गर्म होता है, भाप बनता है, वो आकाश में जाती, वो ठंडी होती, फिर वो बारिश होता है, फिर वो पानी बहकर समुद्र में जाता है, फिर वो भाप बनता है, ये एक साइकिल। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती ही रहती है, सूर्य पृथ्वी अपनी ही धुरा के आसपास घूमती रहती है, चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। तो ये प्रकृति जगत के छोटे छोटे साइकिल है जो अपने अपने ड्यूरेशन में रिपीट होते रहते हैं। सेम ये होल वर्ल्ड साइकिल है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसमें मुख्य 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। जैसे जैसे हम आत्माओं की स्थिति बदलती है, ऐसे संसार की स्थिति भी बदलती, और जिस समय में, जिस टाइम पीरियड में जिस बात का प्रभुत्व होता है, उस हिसाब से उस टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है। जैसे जिस समय में गांधी जी के विचारों का प्रभाव था, तो हम उसको क्या नाम देते थे, भई ये गांधी युग है। जिस समय में विज्ञान का विकास हुआ, तो हम उसको विज्ञान युग कहने लगे। जिस टाइम में अवकाश के संशोधन हुए, तो उसको हम अवकाश युग कहते थे। जिस टाइम पीरियड में कंप्यूटर खोजा गया, तो हम उसको कंप्यूटर युग कहने लगे। तो हमारे विचार और प्रवृत्ति जिस समय में जो चलती है, उस हिसाब से उस टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है। सृष्टि का आरंभ काल ये 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें ये 4 युग है, चारों की आयु समान है 1250 वर्ष। इसलिए इसकी यादगार स्वस्तिक के हम 4 सरीखे भाग करते। स्वस्तिक तो आप निकालते हैं ना, हम भक्ति मार्ग में हर शुभ कार्य में स्वस्तिक निकालते, चाहे घर का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, अकाउंट का नया रजिस्टर हो, हाँ स्वस्तिक निकालते हैं ना, पर हम जानते नहीं है कि ये स्वस्तिक किस चीज की यादगार। चार सरीखे भाग क्यों करते हैं और चारों ही भाग में हम बिंदु करते हैं? ये चार सरीखे भाग चार युग की यादगार। हरेक युग 1250 वर्ष है और हर युग में आत्मा की स्थिति क्या है, इसलिए वो आत्मा बिंदु करते हैं चारों ही युग। चारों ही युग में आत्मा की स्थिति क्या बनती जाती है, उस नॉलेज को जानना, उसको स्वस्थिति स्वस्तिक कहते हैं। स्वस्तिक का अर्थ है स्वस्थित, अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होना, जिसको बहन जी ने कहा ना कि स्वदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र में हमें स्व का दर्शन करना है। जिस समय में हम मनुष्य आत्माओं के मन वचन कर्म सत्य है, सतो प्रधान है, उस टाइम पीरियड को सतयुग कहा जाता है। त्रेता युग, जहां त्रिविध ताप नहीं है, आपने रामचरितमानस में तुलसीदास की बात ये पढ़ी होगी, राम राज्य के वर्णन में उन्होंने लिखा है जहां आधि व्याधि उपाधि ये त्रिविध ताप नहीं है। द्वैत मत जहां से शुरू होती है, द्वापर युग जहां हम बॉडी कॉन्शियस बनते, अनेक मत जहां से शुरू होती है, और कलह क्लेश जहां अधिक होते हैं उसको कलयुग कहते, कलिकाल हम कहते हैं, कलह काल, जहां लड़ाई झगड़े दुख शांति है उस टाइम को कलयुग कहा जाता। तो संसार चक्र का ये नियम है कि हर चीज नए से पुरानी होती है और पुरानी चीज पुनः नई बनती, ये नियम है। जैसे आत्माओं के लिए हम कहते हैं कि आत्मा सतो रजो तमो स्थिति से पास होती है। हम सुबह, आप दिनचर्या का चक्र ही देखिए ना, सुबह हम उठते हैं, स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, सारा दिन पास होने के बाद वही वस्त्र मैले हो जाते। जब कोई चीज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वो नई होती है, वही चीज धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, फिर तत्वों में मिल जाती है, पुनः नई चीज हम बनाते। इसलिए कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आप एक नया मकान बनाते हैं, आप यूज भी नहीं करते हैं, रोज झाड़ू पोछा रंग रोगान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी 5 वर्ष के बाद वो उतना तो पुराना होगा ना? आपको अनुभव होगा, कपड़ा बिल्कुल नया आप अलमारी में रखते हैं, पड़े पड़े 2 साल के बाद भी वो पुराना हो जाता है, वो नया कपड़ा फटने लगता है। भाई थर्मोस का गुण है गरम चीज को गरम रखना, ठंडे को ठंडा रखना, फिर भी कुछ टाइम के बाद वो चीज ठंडी होने लगती। तो ये चक्र का नियम है, जो चीज समय और प्रकृति के संसर्ग में आएगी वो परिवर्तन को प्राप्त होंगी, और हर परिवर्तन में उसकी एनर्जी लॉस होती है, इसलिए आखिर वो डिस्चार्ज हो जाती। सीजन्स में भी आप देखिए, वसंत ऋतु आती है, फिर धीरे 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 होकर आखिर पतझड़ आ जाती। हम कह सकते हैं सतयुग वो स्प्रिंग टाइम है, मानव जात का वो वसंत ऋतु है, जब हर आत्मा हर पदार्थ प्रकृति का हर तत्व अपने फुल पोटेंशियल में, फिर रोल प्ले करते करते हम कुछ परसेंटेज में डिग्रेड होते हैं, उसको त्रेता युग कहते। इसलिए आप देखिए स्वस्तिक का हाथ सतयुग में राइट साइड बताया है, जो शुभ की निशानी, और त्रेता युग में राइट साइड से वो हाथ डाउन में जाता है, मीन्स हम कुछ परसेंट में नीचे उतरते। बेशक हम अशुभ नहीं बन जाते हैं, लेकिन हमारा शुभ पवित्र स्टेज कुछ परसेंट में कम हो जाता। जैसे कोई चीज बिल्कुल नई और थोड़ी पुरानी, खराब नहीं हुई है लेकिन थोड़ी उसकी न्यूनेस कम हुई। हम कह सकते हैं कि सतयुग स्वर्ग है, तो ये सेमी स्वर्ग, ये A1 क्वालिटी है, ये सेकेंड हैंड है। द्वापर युग से स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड जाता है, तो वो अशुभ की शुरुआत है। यहां हम थोड़ा बॉडी कॉन्शियस होने लगते हैं, और बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण थोड़ा थोड़ा विशियस होने लगते हैं। और कलयुग में आप देखिए लेफ्ट साइड से हाथ ऊपर जा रहा है, वो अशुभ की अति की निशानी बताई कि यहां दुख अशांति पाप भ्रष्टाचार पापाचार बुराई विकार दूषण समस्या ये अति पर पहुंचते हैं, इसको कलयुग कहते हैं। और कलयुग के अंत समय, क्योंकि संसार का ये भी नियम है कि जिस चीज की अति होती है उसका अंत भी होता है, तो कलयुग के अंत समय अति धर्म ग्लानि के समय पुनः परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमें ये सारे चक्र का ज्ञान देते, वो हमें रियलाइज कराते हैं कि तुम पहले क्या थे, ये संसार क्या था, और पुनः फिर ऐसा बनना है। इसलिए एक बात हम ये क्लियर कर दें, हम ये नहीं सोचे कि संसार अनादिकाल से ही ऐसा है। कई ये सोच लेते हैं कि दुनिया अनादिकाल से ऐसी है, यहाँ लड़ाई झगड़े दुख अशांति चलते ही रहते, और इसलिए वो कहते हैं जहां सुख है वहां दुख भी है। लेकिन वास्तव में सृष्टि अनादिकाल से ऐसी नहीं है, धीरे धीरे डिग्रेड होते आज वो ऐसी बन गई। अगर ये संसार चक्र दुख का ही हो तो आत्मा को कर्म करने की इच्छा क्यों होती? आज हम दुखी हो गए हैं इसलिए हम सोचते हैं कि छूट जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जन्म मरण ये दुख का कारण है। आज इंसान सुखी हो, सारा समाज सुखी हो, तो कोई थोड़ी सोचेगा कि यहां से मर जाए तो अच्छा है। वास्तव में सत्यता ये है कि जन्म मरण दुख का कारण नहीं है, विषय विकार अज्ञानता दुख का कारण है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चक्र से छूटना नहीं है, विकारों से मुक्त होना। जिस एक्टर को बरोबर एक्शन करना नहीं आएगा वो सोचेगा ना कि मैं निकल जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मुझे बरोबर आता नहीं। वरना हर एक्टर को क्या बनने की इच्छा होती? हीरो बनने की इच्छा होती। हर एक एक्टर चाहता है कि हम हीरो एक्टर बने, पर जिसको ठीक एक्शन करना नहीं आएगा वो ही चाहेगा ना निकल जाऊं। तो जब हमें कर्म ठीक करना नहीं आता है, अपने जीवन को सुखी बनाना नहीं आता है, तो हम सोचते हैं कि इससे छूट जाए तो अच्छा। लेकिन वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें हीरो एक्टर बनना है, सर्वश्रेष्ठ देवताएं बनना और फुल रोल प्ले करना। हर एक एक्टर चाहता है कि मेरा फिल्म में मेजर रोल हो आदि से अंत। तो अब जब ये सृष्टि नाटक, और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि मान लो आपके बाप दादा के बाप दादा ने उनके अपने जमाने में कोई मकान बनाया हो, और आज वो पीढ़ियों के बाद आपके जमाने में वो मकान पुराना हो जाए, जर्जरी भूत हो जाए, टूटा सा हो जाए, तो आप ऐसे कहेंगे क्या कि हमारे बाप दादा के बाप दादा ने ऐसा कैसा मकान बनाया? भाई आपके बाप दादा के बाप दादा ने ऐसा नहीं बनाया था, उसने तो नया ही बनाया था, पर आपके जमाने में वो पुराना हो गया। हर क्रिएटर अपनी क्रिएशन अच्छे से अच्छी बनाना चाहता है। आज आप ही बताइए ना, आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते? अपने से भी बढ़कर बनाना चाहते। तो परमात्मा ऐसा बेकार थोड़ी विश्व बनाएगा। परमात्मा ने अच्छा ही विश्व बनाया था, सुखमय संसार ही बनाया था, और तब हम गाते भी है भगवान ने अपने जैसा हर इंसान बनाए। ये झूठ कहां से आया, ये पाप कहां से आए, हम गीत गाते हैं ना। तो भगवान ने भी अपने जैसा पवित्र सुखमय श्रेष्ठ संसार ही बनाया था, लेकिन आज कलयुग के अंत समय हमारे ही पापों के फल स्वरूप ये विश्व दुखमय बन गया। लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं कि काहे को ऐसा विश्व बनाए, गाते हैं ना, काहे को दुनिया बनाई, हाँ दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आए? अरे उसके मन में थोड़ी कुछ आया, फिर आप कल्याणकारी कैसे कहते उस? खुद को नहीं देखते हैं, भगवान को दोष देते हैं, और फिर फिर कहते हैं हम इसमें से निकल जाए। ये हमारे अपने पापों के फल स्वरूप ये विश्व आज दुखमय बन गया है, इसलिए तो वो डायरेक्टर आए हैं और हमारे एक्शन कर्मों को ठीक कर रहे हैं कि अब फिर से सोल कॉन्शियस बनो, पवित्र योगी बनो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, फिर सतयुग की स्थापना के लिए निमित्त बनो। इसलिए कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का ये संगम युग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट युग है और वो संगम युग अभी चल रहा है। तब इसको कहा काल चक्र, टाइम साइकिल, कि अभी इस विश्व घड़ी में कौन सा समय चल रहा है। समय को जानना भी तो जरूरी है। एक वाक्य लोग पता नहीं शादी के समय या किस समय बोलते रहते हैं, समय वर्ते सावधान। मैं समय को पहचान कर सावधान होना होता है। तो ये कौन सा समय चल रहा है? ये है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का समय। और वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो है इंपॉर्टेंट। समय तो बदलेगा ही, कलयुग बदल सतयुग हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम देवता नहीं बनेंगे तो विश्व स्वर्ग नहीं बनेगा। जो बनने वाले हैं वो बन ही जाएंगे, है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि समय आने पर, कहते हैं ना भी समय आने पर, आग लगने पर तो मूर्ख भी दौड़ते हैं पानी की बाल्टी लेके, लेकिन समझदार उसको कहते हैं जो समय के पहले सावधान रहते। इसलिए ये नहीं सोचिए बहन जी जब विनाश आएगा तब हम भी योगी बन जाएंगे। कई लोग ऐसा हमें कहते हैं, बहन जी जब विनाश होगा ना हम आपकी पूछ पकड़ लेंगे। अरे भाई खास योग सीखने आए हैं, तभी भी योग नहीं लग रहा है, अंत में क्या योग लगेगा। इसलिए समय की राह नहीं देखनी है, हमें स्वयं को बदलना। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है। लोग अक्सर हमें ये पूछते हैं, बहन जी विनाश कब होगा? माना उनको हम वो टाइम बता दें और उस समय वो ठीक होके तैयार हो जाएंगे। मान लो आपको कोई बता भी दे कि विश्व का विनाश होने में अब 5 साल बाकी है, लेकिन आपको कितना समय बाकी है उसका है कोई आपके पास गारंटी? इसलिए हम इस बात में क्यों जाए? सृष्टि परिवर्तन के हिसाब से स्वयं के परिवर्तन के हिसाब को क्यों जोड़ते, है ना? वो हमें पहले ही करना। जैसे कई बार जब हम भाई बहनों को कहते हैं कि अब आप ज्ञानी बनिए, योगी बनिए, रोज अभ्यास करने आइए, तो वो क्या कहते हैं कि बहन जी भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर आएंगे। अब भगवान की तो इच्छा है ना कि हम पवित्र बने, योगी बने, तब तो वो कह रहा है, पर हमारी इच्छा नहीं होती है इसलिए नाम भगवान का ले लेते हैं। बाकी सब काम, प्रोग्राम, प्लानिंग अपनी इच्छा से करते हैं और स्व परिवर्तन के लिए भगवान पर थोप देते हैं। इसलिए हमने कहा कि भगवान की इच्छा के से साइकिल नहीं चलता है, हमारे विचार संस्कार के आधार पर ये चक्र चलता है, इसलिए इसको कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि स्वयं भगवान आते हैं हमें पावन बनाने। अन्य कोई युग में परमात्मा नहीं आते हैं, और युग में परमात्मा आता तो कलयुग क्यों होता? फिर तो उनके आने का फायदा क्या है अगर संसार कलयुग ही बनता जाए? कलयुग के बाद सतयुग आता है, इसलिए परमात्मा कलयुग के अंत समय आते हैं और सतयुग की स्थापना का कार्यक्रम। इसलिए हम कहते हैं अभी ही, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, क्योंकि भगवान से ऊपर और कोई नहीं है जो दूसरे युग में आके हमें पावन बना दे। इसलिए जबकि वो आए हैं और हमें कह रहे हैं तो हमें बनना चाहिए ना, फिर बहाने नहीं निकालने चाहिए ना। समय पर सीजन में जो बीज बोता है वो अनेक गुना फल प्राप्त करता है, और इसलिए हम कहते हैं कि भाई सीजन के फल की जो मिठास है वो और फल में नहीं होती। तो ये सीजन है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, ये सीजन है श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने के। ये टाइम पास हो गया फिर कुछ नहीं हम कर सकेंगे, इसलिए समय को पहचानना है, स्वयं को जानना है और जीवन में संयम को धारण करना है। तो हम सभी इस विश्व नाटक के पार्टधारी हैं, ये शरीर हमारी ड्रेस है, हम सब आत्माएं एक्टर्स है, हरेक अपने अपने संस्कार अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे ड्रामा में हर एक्टर का अपना रोल होता है, यहां हर आत्मा का अपना रोल है। आप देखिए एक ना मिले दूसरे से, हर एक की शक्ल भी अलग है, अकल भी अलग है। इसलिए कहते हैं कि एक माँ बाप के दो बच्चे भी एक सरीखे थे, इवन हर अंगूठे की प्रिंट अलग अलग। इसलिए हम ये नहीं सोचे, कई बार हम सोचते हैं ना कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, भाई वो उसका रोल है तो वो वही करेगा, पर वो हम नहीं समझते हैं, इसलिए संकल्प चलाते रहते हैं कि ऐसा क्यों करता है। आज ड्रामा में मान लो एक दृश्य में चार एक्टर है, एक का रोल रोने का है, एक का उसी समय हंसने का है, एक का साक्षी होके देखना है, तो हर एक अपना रोल प्ले करेंगे ना। ये थोड़ी एक रो रहा है तो दूसरा भी रोए, तीसरा भी रोए, चौथा भी रोए तो ड्रामा चलेगा। तो यहां हर एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे अपना रोल प्ले करना है, पर हम क्या कहते हैं, उसने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने किया, भाई उसका उसने वो रोल किया, उसका वो रोल है गुस्सा करने का, लेकिन मैं कौन हूं? अब तो हमें ज्ञान है ना कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मेरा रोल तो शांति में रहने का है ना। वो भल गुस्सा करता है, ऐसे थोड़ी मुझे उनके रोल को फॉलो करना है। लेकिन हम अपने रोल पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों के रोल को देखते रहते हैं। वास्तव में हर एक्टर का काम क्या है? अपना रोल अच्छी रीति प्ले करना। दूसरा एक्टर ठीक करता है नहीं करता है ये देखना किसका काम है? डायरेक्टर का काम। हम उल्टा करते हैं, हम अपने रोल पर ध्यान नहीं देते हैं, हम दूसरों का देखते हैं, इनके घर में क्या चलता है, इनकी बहू क्या करती, इनका बेटा कैसा निकला, हम दूसरों का देखते। अब मान लो तीन डांसर है, तीनों डांस कर रही है। अब उसमें से एक डांसर अपने ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी के ताल पर ध्यान देंगी कि भाई इनका ताल मिलता है कि नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा? उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। जीवन इसलिए बिगड़ा कि हम अपने ताल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे के कर्म डांस को देख रहे हैं कि वो कैसा करता है। इसलिए अब तो डायरेक्टर आया है, वो अटेंशन देगा ना। हमें अपने कर्म पर अटेंशन देना है। और अब मुख्य बात ये है कि अब ये ड्रामा का ये चक्र पूरा हो रहा है, ये चक्र पूरा हो रहा है, अब हमें वापस घर जाना है। शो पूरा होता है तो एक्टर्स क्या करते, ड्रेस उतार कर अपने ओरिजिनल रूप में आके वापस घर जाते, फिर नेक्स्ट शो होता है, फिर ड्रेसअप होके आते। तो अब ये कलयुग के अंत में अब ये नाटक पूरा हो रहा है, अब हमें वापस घर जाना है। ये कलयुगी शरीर छोड़कर, कलयुगी संस्कार छोड़कर वापस जाना। हम एक बात जानते हैं वापस जाने की, कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पर दूसरी बात भी अब याद रख लीजिए कि हम पवित्र आए थे, पवित्र बनकर वापस जाना है। ये कलयुगी माल मसाले के साथ वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो देश पवित्र है, इसलिए ये गड़बड़वा नहीं चल सकती है, ये यहाँ हमें छोड़ के जानी होगी, इसलिए छोड़नी तो पड़ेगी ही, तो जबरदस्ती छोड़नी पड़े, इससे तो क्यों नहीं प्यार से छोड़ दीजिए। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही